ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल को सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने वाले दो कोचिंग संस्थानों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और राजधानी के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव कल शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर आज नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन बच्चों को कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है।
अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई, किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में खेल के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले गोल्डी ने प्रसन्नता प्रकट की।
मैं गोल्डी कुमारी बिहार बख्तियारपुर से आई हूँ। मुझे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने देश के लिए प्राउड फील करवाया।
प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व युवा शक्ति के लिए भारत की ओर आशा और आकांक्षाओं के साथ देख रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों में सबसे अधिक ध्यान युवाओं के सशक्तिकरण पर दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था, खेल, विनिर्माण, उद्योग, कौशल विकास की बात हो या इंटर्नशिप योजनाओं की, सभी कार्यक्रमों को युवा केंद्रित बनाया गया है।
भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है।
ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है।
श्री मोदी ने घोषणा की कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित तौर पर नागरिकों को नकदी बांटने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निदेशालय के दिल्ली कार्यालय में दी। उन्होंने शिकायत में भाजपा नेता प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा पर नागरिकों को नकदी बांटने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त की। एक रिपोर्ट।
श्री सिंह ने आरोप लगाया कि श्री माकन ने श्री केजरीवाल को देशद्रोही कहा, जो आपत्तिजनक है, और कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।
अपमान का, FIR दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की।
अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता।
वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दावा किया कि दिल्ली की जनता चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा देगी।
जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। कोई मिलके नहीं हराता था, जनता हराती है। अगर जनता चाहेगी कि हारेंगे तो कोई इनको बचा नहीं सकता।
प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
राजधानी दिल्ली के खेल और फिटनेस क्षेत्र के लगभग 80 लोगों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने कहा कि सभी पहलवानों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अब ये स्वस्थ रहने के लिए आम लोगों को प्रशिक्षण और प्रेरणा दे रहे हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से उनकी सरकार बनने के बाद पार्टी खेल और पहलवानी से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर काम करेगी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि सभी पहलवान पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार के 24 घंटे जलापूर्ति के दावे को झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर क्षेत्र में जिस पंप हाउस का उद्घाटन कर 24 घंटे पानी की सप्लाई का दावा मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है, वो पंप हाउस वर्ष 2011 से चल रहा है। श्री बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव से पहले सुर्खियां बटोरने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पुराने कामों को नया बताकर उद्घाटन और शिलान्यास जैसे कार्यक्रम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की घोषित की गई महिला सम्मान राशि योजना के अंतर्गत अब तक 22 लाख महिलाएं पंजीकरण करवा चुकी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि महिलाएं जानती हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज और महिलाओं को मुफ्त बस टिकट की सुविधा दी है, उसी तरह सरकार महिला सम्मान योजना को भी लागू करेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए पार्टी को महिला विरोधी बताया। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि महिलाएं सशक्त और मजबूत हों। उधर दिल्ली भाजपा ने इस योजना को फर्जी बताते हुए आज श्री केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा कि महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई भी योजना अभी तक दिल्ली में लागू नहीं हुई है। पार्टी ने लोगों से आग्रह किया है कि इन योजनाओं में पंजीकरण के नाम पर अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। इस बीच कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर इन योजनाओं के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रादेशिक समाचार के लिए शशांक कुमार।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल को 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति MACP योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। सेवानिवृत्त BSF कर्मियों ने एक याचिका में पेंशन तय करने के लिए MACP योजना के अंतर्गत तीसरा वित्तीय लाभ मंजूर करने संबंधी अभिवेदन अस्वीकार करने को चुनौती दी थी। वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपने काडर में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर योजना के लाभ के विस्तार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2022 और 2023 के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने वाले दो प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों पर 60 लाख रुपए और एक अन्य संस्थान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CCPA ने संस्थानों को तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन हटाने का आदेश दिया। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा के लिए कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न दिया जाए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के कई क्षेत्रों में छापेमारी में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से उच्च गुणवत्ता की 3.5 किलोग्राम गांजा जब्त की है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने बताया कि ये गिरोह हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नववर्ष की पार्टियों और कार्यक्रमों के लिए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाना था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में कल से राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि दो दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन प्रख्यात लेखक, कवि और पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अशोक चक्रधर करेंगे।
राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम पहले देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों से जुड़े विषय शामिल होते हैं। दो दिवसीय इस महोत्सव में दर्शकों को देश भर के प्रतिभाशाली युवा छात्रों के आकर्षक नाटक देखने को मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 50,000 गांवों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार करना और एक ही दिन में 58 लाख से अधिक कार्ड वितरित करना बड़ी उपलब्धि होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री चयनित लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को ये स्वामित्व योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS तकनीक से गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन ने परंपरागत अभ्यासों पर आधारित सुगम और कम खर्चीली स्वास्थ्य सेवा से लोगों को सशक्त बनाया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी के लिए आयुष, राष्ट्रीय आयुष मिशन के जरिए समग्र स्वास्थ्य सेवा शीर्षक की फिल्म श्रृंखला का अनावरण करती हुई बात कही। ये श्रृंखला राष्ट्रीय आयुष मिशन के उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तनकारी असर को दर्शाती है। श्री जाधव ने कहा कि फिल्म की ये श्रृंखला जनता के लिए सुगम सरकार की पहलों को लेकर सूचना प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। फिल्म की ये श्रृंखला बीमारियों को कम करने और देश में आरोग्य को बढ़ावा देने में आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। ये श्रृंखला परिवर्तन की वास्तविक जीवन की कहानी को दर्शाती है। इस श्रृंखला में दिखाया गया है कि कैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया है और उनके खर्च को भी कम किया है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के जरिए आयुष स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाना और निरोधक देखभाल को बढ़ावा देना तथा मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में आयुष व्यवस्था को एकीकृत कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनावों में 64,64,00,000 वोट डाले गए। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 65.78% है। ये आंकड़े 42 सांख्यिकी रिपोर्टों में जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल पंजीकृत थर्ड जेंडर मतदाताओं में 23.5% की वृद्धि हुई है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट चुनाव प्रणाली में लोगों के विश्वास को दर्शाती है और उनके लिए लाभकारी होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कृषि तथा बागवानी की पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज बहुहितधारक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और बीज विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि और बागवानी की पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा दे रही है। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि पारंपरिक किस्मों में बेहतर स्वाद, सुगंध, रंग, पकाने की गुणवत्ता और पोषण संबंधी समृद्धि जैसे अद्वितीय गुण होते हैं। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के आनंद विहार में 382, बवाना में 389 और जहांगीरपुरी में 386 दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल को सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।